أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म की बातें उन लोगों की भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 113 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला ने पिछली आयत में फरमाया कि यहूदी समझते हैं कि सिर्फ़ वो जन्नत में जाएंगे, और क्रिश्चियंस का भी यही दावा है कि उनके सिवा कोई जन्नत का हकदार नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि नसरानियों का कोई अकीदा नहीं, उनकी तमाम बातें और दावे बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ ईसाई भी यहूदियों के बारे में यही बातें करते हैं। लैसतल यहूद अला शय, यहूदी हक पर नहीं है, सीधे रास्ते पर नहीं। इन दोनों आयात को सामने रखें तो एक ख़ास किस्म का मज़हबी रवैया, एक मज़हबी सोच सामने आती है। इस तरह की सोच के लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हम बहुत नेक हैं, पारसा हैं, हमें किसी किस्म की किसी इस्लाह की कोई ज़रूरत नहीं, किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, और बाकी सब गुमराह हैं, गलत अकीदे पर हैं, और सब के सब जहन्नुम में ही जाएंगे। इस तरह की सोच के लोग मुसलमानों में भी बहुत पाए जाते हैं। फिर अल्लाह सुबहान व तआला उनके आपस के इन इख्तलाफात पे हैरानगी का इजहार करते हुए कहते हैं, वहुम यतलून अल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। यानी कि अल्लाह की किताब पढ़ने के बावजूद उनके बीच में ये इख्तलाफात हैं, जबकि तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से ही हैं और सबका एक ही पैगाम है। अल्लाह की किताबें तो हर किस्म के इख्तलाफात को दूर करने वाली शय हैं। अगर इंसान खलूस दिल से और सच और हक की तलाश में अल्लाह की किताब का मुताला करें तो असूलन हर किस्म का कन्फ्यूजन, इख्तिलाफ़ और फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहूद ईसाइयों के अकीदों में नुक्स निकाल रहे हैं और ईसाई यहूदी के अकीदे को गलत कह रहे हैं, जबकि अल्लाह की किताब का मकसद तो ये होना चाहिए कि इंसान उसे पढ़ कर अपनी इसलाह करे, अपना अकीदा चेक करे कि क्या मेरा अकीदा इस किताब के मुताबिक है। किताब का मकसद पढ़ने वाले को सीधी राह दिखाना है, दूसरों पे उंगलियां उठाना नहीं है। अगर यहूद और नसारा किताब के साथ ऑनेस्ट रहते, उसमें तब्दीलियां ना करते, किताब पर अमल करते, तो ना यहूदी रसूलों के का इनकार करके कुफर में पड़ते और ना ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाकर शिर्क में पड़ते। आज हम देखते हैं मुसलमानों में कितने फ़िरके बन चुके हैं। हर कोई अपने आप को सच्चा और सीधी राह पे समझता है और बाकी सब को गुमराह और झूठा। हर किसी को लगता है कि सिर्फ वही जन्नत का हकदार है, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहमदी, हर कोई दूसरे को गलत और ख़ुद को सही समझ रहा है। अगर पाकिस्तान की मस्जिदों में जुम्मे का खुतबा सुने तो ज़्यादा फोकस अपनी इस्लाह पर नहीं होता, बल्कि दूसरे फ़िरकों के अकीदे को गलत साबित करने पर होता है। वहुम यतलून अल किताब, हालांकि ये सब एक ही किताब पढ़ते हैं, एक कुरान, एक अल्लाह का कलाम, और इतने फ़िरके। अगर इंसान सच्चे दिल से तमाम दुनियावी फ़ायदों को पसे पुश डालकर ख़ास हिदायत हासिल करने के लिए अल्लाह की किताब पढ़े तो इस पर हक वाज़े हो जाएगा, इख्तलाफ ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह की किताब तो फुरकान है, सच और झूठ झूठ में फ़र्क करने वाली शय है। उसके बावजूद हम इतने फ़िरकों में बटे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, और इसी किस्म की बातें उन लोगों की भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। यानी कि इस तरह की बातें तो उन लोगों को सूट करती हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते, यानी मुशरिकीन मक्का। मुशरिकीन मक्का उम्मीयीन थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनके पास कोई अल्लाह की किताब थी जो उनके लिए फुरकान बनती, सच और झूठ में फ़र्क बताते। इसलिए वो समझते थे कि वही हक पर हैं, वही सच्चे हैं और सीधी राह पे हैं, उनके अलावा सब गुमराह हैं। जंगे बदर पे जाने से पहले अबू जहल और बाकी तमाम सरदारों ने काबे का गलाफ पकड़कर अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, हम में से, यानी हम में और मुसलमानों में से जो भी हक पर है उसे तू जीत अता फरमा। यानी वो अपने कुफर और बुतों के पुजारी होने के बावजूद ये समझते थे कि वो हक पर हैं और मुसलमान गुमराह हैं, क्योंकि उनके पास किताब का इल्म नहीं था। अल्लाह ताला यहाँ कंपैरिजन करते हैं कि अगर किताब का इल्म ना हो तब तो ऐसी बातें करना बनता है, तब इख्तलाफ होना भी बनता है, क्योंकि कोई रोशनी नहीं है, कोई इल्म नहीं है जो हक का रास्ता दिखाए। लेकिन किताब पढ़ने वाले अगर इख्तलाफात में पड़ जाएं, फ़िरका वारियत में पड़ जाएं, एक दूसरे को काफिर समझें, तो ऐसा करना उन्हें जेब नहीं देता। आज तुमने जितने इख्तलाफात करने हैं कर लो, दुनिया के फ़ायदों के लिए, अपनी दुकान और अपनी मस्जिदों को चमकाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने मजहबी कारोबार के लिए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। ये इख्तलाफ जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह ताला क़ियामत के रोज़ कर देगा। अगर आज किताब को, सुन्नत को समझ कर हमने अपना मुहासबा ना किया, अपना अकीदा दुरुस्त ना किया, तो एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला खुद सच और झूठ का फ़ैसला कर देंगे। उस दिन हर किसी को पता चल जाएगा कि किसका अकीदा ठीक और किसका बेबुनियाद था, कौन सीधी राह पे और अपने नबी की सुन्नत पे था और कौन गुमराह था, कौन जन्नत का हकदार है और कौन नहीं। आज तो हम अपने फ़ायदों के लिए दूसरों के अकीदों पर उंगलियां उठाते हैं, लोगों के ईमान के जज बन गए हैं, लोगों पे तकफीर के फतवे लगाते हैं, जन्नत दोजख के फैसले करते हैं। उस दिन अल्लाह ताला जज होगा और तमाम इख्तलाफात का फ़ैसला हो जाएगा। फिर आया नंबर 114 में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन यज़कुरा फी हस्मुहु वसअ फी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद्दुनिया खिज़्यु व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में लोगों को अल्लाह का नाम लेने से रोके और वो उनकी तखरीब के दर पर हो। ऐसे लोगों को तो इनमें दाखिल ही नहीं होना चाहिए मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई है और आखरत में उनके लिए अजाब अजीम है। अब पिछली आयत में अल्लाह ताला ने तीन ग्रुप्स का जिक्र किया, यहूद, नसारा और वो लोग जो किताब का इल्म नहीं रखते, यानी मुशरिकीन मक्का। इस आयत में अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का की तरफ फोकस करते हैं कि वो भी अपने आप को हक पर समझते हैं, जबकि उनसे बढ़कर जालिम कौन होगा कि वो अल्लाह की मस्जिद में लोगों को अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं। इस्लाम के शुरू से ही मक्का में मुसलमानों को खाना काबा के सामने इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि अपने चचा अबू तालिब की प्रोटेक्शन हासिल थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने नमाज भी पढ़ लिया करते थे और कुरान भी पढ़ते। उसमें भी अक्सर कुरैश की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टॉर्चर किया जाता। सहाबा कराम ने भी जब कभी कुरान पढ़ने की कोशिश की तो उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया और उनको खाना काबा के सामने इबादत करने की इजाज़त नहीं दी गई। मदीना हिजरत के बाद मुसलमानों को 7 साल तक मक्का में दाखिल होने, उमरा या हज करने की इजाज़त नहीं थी। 6ठे साल में जब मुसलमान उमरा करने की नीयत से गए तो उन्हें मक्का के बाहर ही रोक दिया गया। उस मौके पर सुलह हुदैबिया हुई, मुसलमानों को वापस भेज दिया गया कि अगर उमरा करना है तो अगले साल आना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिए जाने से रोके। वसा फी खराबिहा, और मस्जिदों में तखरीब और ख़राबी पैदा करने की कोशिश करे। मस्जिदों में तखरीब कारी का मतलब एक तो मस्जिदों को फिज़िकली नुकसान पहुँचाना है, लेकिन सबसे बड़ी तखरीब कारी क्या है कि जिस मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए था, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए था, वहाँ बुत रख दिए जाएं, अल्लाह के घर को शिर्क का अड्डा बना दिया जाए। यह आयत उस वक्त मस्जिद हराम यानी खाना काबा के लिए नाजिल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह मक्का दी, लेकिन इस आयत में लफ्ज़ मसाजिद आया है कि जब भी कोई भी अल्लाह की किसी भी मस्जिद में ऐसा करेगा। आज ये आयत पढ़कर मेरे जहन में मस्जिद अक्सा आती है, वो तमाम वीडियो इमेजेस जिसमें मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर रबर बुलेट्स चलाई जाती हैं, इसराइली सोल्जर्स जूतों के साथ मस्जिद में दाखिल होते हैं, रमज़ान में वहाँ मुसलमान इसराइलियों की गन्स के साए में तरावी पढ़ते हैं, मस्जिद अक्सा की दीवारों और दरवाज़ों पर बुलेट्स के निशान हैं। सा आफी खराबिहा, इसराइलियों का असल प्लान मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहाँ हैकिल सुलेमानी बनाना है। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी ये जिसमें वो अपने बच्चों को भी स्कूल में यही सिखा रहे थे कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को मस्मार करके टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाना है। फिर इंडिया में देखें, अभी कुछ महीने पहले खबर आई थी कि इंडियन पुलिस ने 16 मस्जिदों में जुमे की नमाज पे पाबंदी लगा दी है। कुछ वीडियोस भी मैंने देखी थी कि जिसमें इंडियन पुलिस जुमे के दिन मस्जिदों में दाखिल होकर नमाजियों को डंडे मार मार कर मस्जिदों से निकाल रही थी। आखिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो मस्जिदों में लोगों को अल्लाह का नाम लेने से रोके? उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, उन्हें तो इन मस्जिदों में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि वो खौफ की हालत में दाखिल हों। मुशरिकीन ने मक्का के लिए ये पेशन गोई सच साबित हुई। जिस हरम में वो दनदनाते फिरते थे, जिस हरम को वो अपनी मलकियत समझते थे, जहाँ मुसलमानों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, फतह मक्का के बाद उन पर मुसलमानों का ऐसा इक्तदार हुआ कि वो उसी मक्का और उसी हरम में डर डर कर रहते थे। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में फरमाते हैं, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाह वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, लेकिन अब क्यों ना अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं। फतह मक्का के बाद अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को 4 महीने का टाइम दिया कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर मक्का से निकल जाओ। फतह मक्का से लेकर आज तक किसी गैर मुस्लिम को खाना काबा की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फतह मस्जिद अक्सा भी अता फरमाए, और जहाँ भी मसाजिद कुफार के कब्ज़े में हैं वहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को इकतदार और कुव्वत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करने, मेंटेन करने और मसाजिद की खिदमत करने का हक़ तो वही लोग रखते हैं जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। इस आयत में अल्लाह ताला का वादा है कि जो अल्लाह की मसाजिद में तख़रीब कारी करेगा और लोगों को अल्लाह का जिक्र करने से रोकेगा, लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रसवाई है और आखिरत में भी उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को इसराइलियों के इकतदार से आज़ाद फरमाए और एक बार फिर से फ़लस्तीनियों को आज़ादी से वहाँ अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।